पीछे वाली आयत के बाद अब अगला टॉपिक इनका दोनों सर अब जोड़ते हैं इंशाल्लाह। पिछले सबक के आखिर में हमने देखा था कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। इस सबक में अभी तक हमने जो टॉपिक क्लियर किया है वो क्या है कि हिदायत से हटाने वाली चीज़ें। अब अगली आयत में हिदायत की तरफ बुलाने वाली क्या चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए देखते हैं आयत नंबर 18। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह खुद गवाह है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। जरा नोट करें, हम कलमा पढ़ते हुए क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया के हम गवाही देते हैं ना कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं। यहाँ क्या, अगर मैं समझाने की खातिर, सिर्फ आपके शौर को बेदार करने की खातिर ये कहूँ कि इधर अल्लाह कलमा पढ़ रहा है तो बात ठीक है, हम भी गवाही देते हैं कलमे में, अल्लाह ताला भी देते हैं, बहुत बड़ी ऑनर है। सबसे बड़ी गवाही तो है ही अल्लाह ताला की, और कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत सारी कस्में भी खाई हैं, गवाहियाँ भी दी हैं। कायनात के मनाजर को देख लीजिए या पिछली किताबों को देखिए, सब जगह अल्लाह की गवाही दिखेगी। लेकिन यहाँ बस इतनी बात समझ जाएं कि जो बात बंदे को मुसलमान बनाती है अल्लाह की तरफ, उसकी यहाँ निस्बत है। और कौन करता है ये काम, वल मलाइका तू, और सारे फरिश्ते, मलक से मलाइका, सब फरिश्ते भी इस बात के गवाह हैं। और भी है कोई, जी है, कौन, व उलुल इल्मी, और अहले इल्म भी इस पर गवाह हैं। देखिए यहाँ आलिम नहीं कहा, मुतालिम भी नहीं कहा, तालिब इल्म भी नहीं कहा, इल्म वाले का है। हर एक अहले इल्म है अपने हिसाब से, कोई थोड़े इल्म का अहल है तो कोई ज़्यादा का। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ ये बात बता के आपके मेरे लिए आसान कर दी कि जो लोग अल्लाह की इस गवाही की अहमियत को समझते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए कि अल्लाह ने यहाँ अपने नाम के साथ फरिश्तों की गवाही और अब इल्म वालों की गवाही का तذکرہ किया। और उलुल इल्म वो हैं, अल्लज़ीना याक़िलून, जो अक्ल इस्तेमाल करते हैं, अल्लज़ीना यस्कुरून, जो गौर व फिक्र करते हैं। ये वो लोग हैं जो कायनात की निशानियों में से अल्लाह को पहचान लेते हैं और मान लेते हैं कि यही सच्चा माबूद है, और यही हैं वो लोग जो वाकई हकीकी इल्म यानी इल्मुल वही हासिल करते भी हैं और सारी ज़िंदगी कुरान के तालिब इल्म रहते हैं। हमने सूरत बकरा के 20वें रुकू की पहली आयत में क्या पढ़ा था, इन नफी खल्क समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल, आयतुल आयात कहते हैं जिसको। वहाँ एक ही आयत में कायनात के बहुत सारे मज़ाहिर का जिक्र था, उसके एंड पे क्या था याद होगा आपको, ला आयातिल लिकौमी याकिलून, कि इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो कौमी याकिलून है ना, वही उलुल इल्म है, वही इल्म वाले हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक अगर कुरान पाक में कोई और आयत इल्म और इल्म वालों की शान में ना भी होती तो ये आयत काफ़ी थी, और मैं इस एक आयत से अपना ख़ास रिश्ता महसूस करती हूँ। अल्लाह ताला ने किसी भी इस्तखारे के मौके ये आयत मुझे ख्वाब में सुनाई, दिखाई, जो भी हुआ, जब भी मैं इस आयत पर आती हूँ ना तो मैं एकदम अपने उस ख्वाब को याद करती हूँ, और मैं सोचती हूँ दुनिया वालों को अगर पता चल जाए ना कि तकाबुल जब करना पड़े, दीन छोड़ो के दुनिया छोड़ो, जॉब छोड़ो के दुनिया छोड़ो, घर छोड़ो के दीन छोड़ो, तो ये आयत आपको गवाही दिलवाएगी, इल्म का रास्ता अपना लो। और इस एक आयत ने मुझे बहुत बड़े बड़े फैसले करने पे अल्लाह के हुक्म से माइल कर दिया था कि इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं है। तो अल्लाह ये चाहता है कि इल्म को इख्तियार किया जाए। आज इल्म दो कौड़ी का हो गया है, इल्म वालों की इज्जत तो बड़ी है लेकिन उनसे खैर को लेना, उसको संभालना और उसको आगे देना ये बहुत थोड़ा है। आज आप देखिए दुनिया में एक से एक बड़ा आलिम बैठा हुआ है, आप ज़रा से कुछ नाम सर्च करके देखें, माशाल्लाह सऊदी अरब में ऐसी ऐसी शख्सियात है, इल्मी शख्सियात के आप जब उनकी बातें सुनते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। पर दुनिया में कितनी उनको कवरेज मिलती है, कितने उनको जानते हैं, कितने उनके फ़ैन हैं, कितने उनको लाइक करते हैं, कितने उनके फेसबुक के पेज को जाके सर्च करते हैं, आटे में नमक के बराबर। वो लोग इस वक्त दुनिया पे एक झाग बन के छाए हुए हैं कि जो दुनिया की चीज़ों में लोगों को आगे करे, और उसमें भी फिक्शन ही ज़्यादा आम है। तो सच्चे इल्म वाले आज बहुत गहरी तहों के अंदर दबे हुए हैं। और मुझे हदीस याद आ जाती है कि दुनिया में कुछ लोग हैं उनकी कोई कदर ही नहीं है, दावत करें तो ना बुलाएं, वो करें तो उनके घर कोई ना जाए, रिश्ता करें तो इनको ना बुलाएं, पर अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी शान है कि अगर वो अल्लाह के लिए कसम भी खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को सच्चा कर दे। इस आयत से आपको इल्म की अहमियत का पता चलता है। इल्म क्या है, इल्म की शान, इल्म की बात, ये सारी करके, और यहां सबसे बड़ी बात देखिए, तौहीद, तौहीद का सबूत है। इतनी बड़ी चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरत के शुरू में भी तो आपने पढ़ा ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। हकीकत ये है कि जिसको इस बात का यकीन हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, वो बादशाह, वो इस दुनिया में वाकई बादशाहों वाली जिंदगी बसर कर सकता है, बाकी नहीं। सवाल पैदा होता है कि ये गवाही अल्लाह ने कैसे दी? अपने इल्म से दी, अपने फेल से दी, कायनात बनाई ही इसी कुलिये पे, पूरी दुनिया एक अल्लाह की जात पे तो चल रही है। सूरह हज है गालिबन, जो सूरह अंबिया, मेरा हज है, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर दो खुदा होते तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता, अल्लाह ने ये बात बता दी। तो अल्लाह ताला ने ये गवाही कैसे दी? तो इसका जवाब, अल्लाह सुबहान ताला ने ये गवाही कौल और फेल और अमल हर एक से दी है। हर चीज कायनात की बोल बोल के कह रही है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर फरिश्तों के साथ इल्म वालों का नाम लेना, कभी आप इसको सोचे ना, आपका सर सजदे में जाएगा। मैं इस एक आयत पे कहती हूँ, अल्लाह अगर तेरी नजर में कहीं भी इल्म देने वालों या इल्म लेने वालों में या इल्म की तलब में मेरा नाम है ना, तो मैं इसका हक नहीं अदा कर सकती। उलुल इल्म आज हैं, उलुल दौलत भी हो सकते हैं, उलुल माल, उलुल औलाद, उलुल अहल, सारी जिंदगी ये दुनिया किस में खप रही है? आप जाके तो देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए। उलुल इल्म होना तो बड़ी कोई एक छोटी बात है। आप अगर शहर में से इतनी खवातीन निकल के आ रही है तो ये आपको अजीब ही काम कर रही है जो दूसरे नहीं करते। हालांकि ग्रोसरी सारे लेने जाते हैं, खाने सब पकाते हैं, मेहमानों को सब देखते हैं, इल्म लेने के लिए आने वाले चुने हुए लोग, और वही मुश्किल लगता है, वही बोझ बना पड़ता है कि हम कुछ ज्यादा तो नहीं करने लग गए दूसरों से। और यहाँ इल्म वालों से मुराद वो लोग जो किताब और सुन्नत का इल्म रखते हैं। और इल्म वालों की गवाही का एक ये भी मतलब है कि हर मामले में रजू इल्लाह करते हैं और अल्लाह के रसूल के जिंदगी से अमल अपने लिए रहते हैं, इससे हकीकत का पता चलता है। चलिए ये भी बात हुई, तौहीद की गवाहियां कायम, नबियों की बातें कायम। आज क्या आप क्या मुझे उम्मत मुस्लिमा को भी अल्लाह ने इस गवाही के मुकाम पे कायम किया? तो पिछली सूरत की आयत, दूसरे पारे की दूसरी आयत 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ। आज वजीफे करने वाले कितने हैं, आज चिल्ले काटने वाले कितने, आज उम्रे करने वाले कितने, आज हज करने वाले कितने, या हज की ख्वाहिश रखने वाले कितने, और तकूनु शुहदा अल नास की गवाहियां देने वाले कितने, आटे में नमक के बराबर। आज हम अजनबी माशरे में जी रहे हैं, हम अपनों में बेगाने हैं, महफिलों में हम तन्हा हैं। तन्हाई हमारी ज्यादा खूबसूरत है महफिलों में जाने से। जहां लोग हमें भेजते हैं खुशी के लिए, वहां हम खुश कोई नहीं आते, हम रो के आते हैं। जब लोग कहते हैं आप तन्हा, आप कहते हैं आपको क्या पता मेरे पास कौन है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। लिखिए एक बात, इल्म अगर आपके पास है ना, आप कभी तन्हा नहीं है। ये तन्हाई कब्र में जाने वाली तन्हाई की तैयारी करवा रही है आपको मुझे, कि जहां यौमला यनफाउ मालुम वला बनून, क्यामत के दिन की तन्हाई इस दुनिया की तन्हाई में आपको मुझे याद दिलाती है। अपने दिल को चेक करें, लोगों में ज्यादा खुश होती हूँ कि अकेले में, अपने घर में ज्यादा खुश होती हूँ कि किसी के घर में, शादी में जाके ज्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ या अपनी रूटीन लाइफ में। आपको अपने अंदर से जवाब आएगा कि आप कितना इल्म दोस्त हैं। इल्म दोस्त बंदा कभी तन्हा नहीं होता, किताब बेहतरीन साथी है। पहले तो सिर्फ किताबें पढ़ी जाती थी ना, अब तो पढ़ी ना भी जाएं तो सुनी तो जा सकती है ना, अब तो किताबें देखी भी जा सकती हैं। तो बात सारी ये है कि कायमम बिलकिस्त। अब अगला हिस्सा, इस हाल में कि वो इंसाफ पर कायम है, इससे क्या मुराद है? नंबर एक, अल्लाह ने खल्क और तकदीर इंसाफ के साथ बनाई, ये गवाही है कि ये कायनात अदल पे कायम है। फिर दूसरी बात है अमर और नहीं, अल्लाह ने जो शरीयत दी उसमें जितने भी हुक्म और मनहियात हैं वो सारी अदल वाली हैं, यानी एक्सट्रीमिज्म वाला दीन नहीं है। यानी ये अब उस गवाही की मजीद डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला मेरे आपके सामने रख रहे हैं कि कायमम बिल किस्त, वो अदल और किस्त का कायम करने वाला है। अल्लाह हर जगह करता है, उसका काम ही ये है। सूरह हुजरात में आते इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, वो तो अदल करने वाले को पसंद करता है। और ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त और कमाल हिकमत वाला। सच बताएं, इतने प्यारे रब को छोड़ के किसी और को अपना बनाने को दिल करता है? जितना किसी दूसरे को अपना बनाएंगे ना, उतना प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अल्लाह से प्यार बढ़ाएं, छोड़ के जाने वाला सवाल ही नहीं है। मालिक भी है, गालिब भी है, हिकमतों वाला है, उसका तसर्रुफ है, मुझे और क्या चाहिए। मुस्नद अहमद की रिवायत में कि अरफात के मैदान में नबी सल्लम ने यह आयत पढ़ी, जो भी हमने पढ़ी है। फिर इसके बाद आपने फरमाया वा अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर गवाहों में से हूँ ऐ रब। तो आप भी अपने दिल से कहे कि अल्लाह मैं गवाह हूँ कि तेरे सिवा कोई नहीं। ये चीज आपको मुझे भटकने से बचाएगी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। मैं सूरह आले इमरान की शुरू को हमेशा इंजॉय करती हूँ, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। मैं सोचती हूँ सूरह बकरा पूरी होती है, दिल को उदासी लगती है, फिर सूरह आले इमरान शुरू होती है, दिल खुश हो जाता है। और ये भी पता चलता है बंदा मोमिन को हर वक्त तड़प फिक्र अपनी हिदायत की। आज आप इसका एक सिरा ढीला करें, दूसरा खुद ही ढीला हो जाएगा। अब अगली आयतों में आयत 19 से लेके सबक के आखिर तक टॉपिक लिखिए, इख्तलाफ की तीन मुख्तलिफ किस्में। यानी आज आपको इसमें जवाब मिल जाएगा कि ये इख्तलाफात क्यों लोग करते हैं, फलां ठीक फलां नहीं। तो मैं ये 19 से लेके 22 तक तर्जमा आलमोस्ट इकट्ठा पढ़ के खुलासे में फिर इसमें से सवाल जवाब आपके सामने रखती हूँ इंशाल्लाह। आयत नंबर 19, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। यानी अल्लाह का पसंदीदा और उसके हाँ मंजूर शुदा दीन तो एक ही है और वो इस्लाम है। देखिए नोट होता है ना, आप प्लास्टिक पे नोट छाप के ले जाएं, रेशम पे ले जाएं, सिल्क के कपड़े पे लिख जाएं, गवर्नमेंट कौन सा एक्सेप्ट करती है जो उसने इशू किया होता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया के जरिए दीन भेजे। वक्त के साथ क्या हुआ कि उस दीन की जाली कॉपियां बनने लगी। यानी असल में आप समझ रहे हैं कि ये आयतें नजरान के वफद के सामने पेश की जा रही हैं, नसारा के बातिल अकायद पे तनकीद है। अब हुआ क्या कि उन्होंने अल्लाह के सच्चे खरे असली दीन में अपनी मर्जियां डाली, जाली बन गई ना। ज़ाहिर ट्रिनिटी जाली दीन है, एथियज्म जाली दीन है। अब आप इमेजिन करें कि नॉर्वे में अगर कोई बहुत सारे जाली नोट फैला दे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के घरों से निकालेगी? नहीं, वो उस नोट को कैंसिल कर देगी। वो कहेगी आज के बाद 20 का नोट ही नहीं होता, सिक्का ही नहीं है 20 का, 100 का नोट नहीं है, हम 200 का बनाएंगे। बस समझ गए, अल्लाह ताला ने पुराने जाली मिलावट शुदा दीनों को खत्म करके एक दिन आगे ला दिया, और वो कह इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब यहूद और नसारा ने अपने दीन में इजाफे और कमियां बेशियां शुरू कर दी तो अल्लाह ने उनको रिजेक्ट करके एक दीन निकाल दिया। और याद रखिए कि सूरत बकरा और आले इमरान में एक कॉमन थिंग ये भी है, सूरत बकरा में ईमान पर बड़ा जोर था ना, आप पढ़ चुके आए थे, बेरी पढ़ देख लीजिए, मना मना बिल्लाही। फिर सूरत की आखिरी आयतों में देख लीजिए, आमन रसूल बिमा। सूरत आले इमरान में इस्लाम पर जोर है, यानी ये इसकी जमाए मुमासलत या वजह मुमासलत या मुखालफत क्या है कि इधर इस्लाम की बात बड़ी आएगी, उधर ईमान की, और इस्लाम की बातों में यह पहली बात आ गई है। सूरत बकरा के आगाज में भी ईमान का जिक्र है, बीच में आयते बिर है, फिर आयतुल कुर्सी है, आखिरी आयात में भी ईमान का जिक्र है, जबकि सूरत आले इमरान में इस्लाम। यहां तक इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आगे आएगा वमन यब्तगी गैर अल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु। इसी सूरत में हम पढ़ेंगे कि जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन लाएगा तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। क्या आपको खुशी हुई ये सुनकर? मेरे पास असली नोट है, मेरे पास असली सोना है, मेरा सोना खरा है, मेरा कपड़ा प्योर रेशम का, मेरा कपड़ा प्योर कॉटन का। खुशी होती है सोच के? मैं तो कहती हूँ अल्लाह सिर्फ इसका ही हक नहीं अदा कर सकती कि हम हैं तो मुसलमान ना। बिलीव मी, अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत दीन दिया है कि मैं कहती हूँ नो कॉम्प्लेक्स एट ऑल, नो कॉम्प्लेक्स एट ऑल। क्राइटेरियन दे दिया, यू हैव ब्रांडेड रिलीजन, और ये छोटी बात है कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला। अच्छा, अब यहां तक बात वाजे हो गई। अब अगली बात यह है कि फिर ये इतने फिरके कैसे बन गए, इतने मजहब कैसे बन गए। अब यहां से आपको इख्तलाफ की हकीकत समझ आएगी। वमख्तलफ अल्लज़ीन उतुल किताब, और अहले किताब ने इख्तलाफ नहीं किया, इल्ला मिन बादी मा जाहुमुल इल्म, मगर इसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था। यानी असल दीन तो इस्लामी था, लेकिन अहले किताब यानी जो दूसरे अदियान के हामिल हैं, फिर वो क्यों नहीं मुसलमान हुए, ये सवाल है। तो उसकी वजह अल्लाह कहते हैं इल्म आने के बाद इख्तलाफ हो, यानी बेइल्म लोगों में इख्तलाफ कोई नहीं होता। किसी को अल्लाह जंगल में पैदा कर दे, किसी देहात में कर दे, ना कोई भी ना उस पर असर रखे तो वो मुसलमान ही होगा, लेकिन इख्तलाफ हुआ इल्म की वजह से। रीजन बगयम बैना हो, इसको नोट कर लें फिर आगे बताऊंगी जाके वजह का। वजह क्या थी? बाहम जिद की वजह से। यानी सूरत बकरा की आयत 213 जो आयत इख्तलाफ हमने पढ़ी थी, आपको याद नहीं भी है तो बस नंबर ही लिख ले। वहां भी हमने देखा था कि दीन शुरू से एक ही था, लेकिन फख्तलफू का लफ्ज महजूफ के बाद का, कि उसके बाद लोगों में इख्तलाफ हुआ और उन्होंने पगडंडियां निकाली इल्म के बाद। तो यहां एक बात समझिए कि इख्तलाफ की एक वजह बगी, सरकशी। वमें यकफुर भी आयात इल्लाही, और जो कोई इनकार करेगा अल्लाह की आयतों का, फइनल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी अल्लाह ताला को हिसाब लेने में देर नहीं लगती। यहां इख्तलाफ की बात है तो लिखिएगा, इख्तलाफ की तीन किस्में होती हैं। एक क्या है? लाइल्मी का इख्तलाफ, पता ही नहीं था लोगों को, हो ये दीन अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, या मुसलमान थे तो दीन की बारीकियों का, या इस्लाम की सजाओं का, या सूद और शराब और रिश्वत हरामकारी इसकी संगीनी का नहीं पता था। इल्म से दूरी, यानी पहली वजह इल्म से दूरी थी। इसका इलाज इल्म दे दीजिए। जैसे हम में से बहुत सारे लोग इल्म पाकर अपने दीन पे पाबंद हो गए ना, पहले भी पता नमाज फर्ज है लेकिन उसकी हुरमत नहीं और हिल्लत नहीं पता थी, पता चल गया। तो बेइल्मी वाला जो इख्तलाफ है ना, उसका तो फौरी इलाज है इल्म। आज उम्मत को अगर सारे कामों से हटाकर इल्म पे लगा देना तो ये उम्मत के सारे इख्तलाफ खत्म हो जाएंगे, पहली वजह। अब जो दूसरा इख्तलाफ है ना, उसकी दो किस्में हैं, वो लिखिएगा, बेइल्मी नहीं, इल्म वालों में। अब जो बेइल्म वाले होते हैं ना, उसमें क्या होता है? मसलन चले, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, चार आइमाए कराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद, इल्म वाले थे ना। इनमें से हर एक ने अपनी अप्रोच की। यानी इल्म वालों के इख्तलाफ में दो चीजें हैं। पहली किस्म क्या है कि जिनमें इख्तलाफ है पर नीयत बड़ी अच्छी है। मिसाल है, हनफी कहते हैं कि एक ही मौके पे तीन तलाक इकट्ठी दे दो तो हो जाती हैं, मिसाल है तीन ही हो गई, मान गए ना। इमाम शाफी और बाकी तीनों इमाम कहते हैं कि नहीं होती, मिसाल दे रही हूं सिर्फ समझने को। अब इसमें बदनीयती किसी की नहीं है, उनकी नीयत दूसरे को लेट डाउन नहीं है, बस अप्रोच का फर्क है। जैसे आप कहते हैं ठंड लग रही है, मैं कहती हूँ गर्मी लग रही है, आप कहते हैं लाइट जला, मैं कहती हूँ मुझे तो पहले ही बहुत आंखों में चुभ रही है, तो ये मेरा आपका फर्क है ना बैकग्राउंड। तो इल्म के बाद वो इख्तलाफ जिसमें बदनीयती नहीं होती, इस इख्तलाफ का दुनिया में तो नुकसान होता है मुसलमानों को, जैसे आज हो रहा है, उम्मत बटी हुई है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला इस इख्तलाफ को माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। वही अनवर शाह कश्मीरी जो हनफी थे, उनका जुमला कि क्यामत के दिन अल्लाह ना तो इमाम अबू हनीफा को रुस्वा करेगा और ना इमाम मालिक और ना इमाम शाफी को, कि तू उसमें ठीक थे, तुम उसमें ठीक थे और तुम उसमें ठीक थे, और ना कबर हशर में इसका हिसाब होना हमसे। लेकिन तीसरी जो संगीन तरीन किस्म, जिसको आप नासूर कह लें, इख्तलाफ भी करते हैं और साथ बदनीयती भी है। अपने नाम को ऊंचा करना, अपनी जमात को ऊंचा करना, अपनी मस्जिद को सबसे ऊपर करना, अपने इदारे का नाम ऊंचा, अपने स्कूल का, अपने उस्ताद का, यानी जब शख्सियात बीच में आ जाती है ना, बदनीयती के साथ जो इख्तलाफ होता है ना, वो तो ना दुनिया में माफ है ना आखरत में माफ है। यहाँ अल्लाह ने बख्शन के लफ्ज़ में ये बात पेश की है कि जब जिद पड़ जाती है ना, जैसे बच्चे को जिद चढ़ जाए ना, तो माँ से भी नहीं दूध पीता, है भूखा दूध नहीं पी रहा, क्यों, इसको जिद चढ़ गई है। बख्शम बेनम, इससे दुआ करें अल्लाह हमें बचाए। इल्म वालों की आपस की नफरतें खत्म हो जाए, पूरी दुनिया एक हो जाए, और इल्म वाले इकट्ठे क्यों नहीं होते, सीधी सी बात है, अभी इसके बारे में जान चुके हैं। चार मस्जिदों को एक मस्जिद बनाएंगे तो चार सदरों को भी तो एक सदर बनाना ही पड़ेगा ना, चार कैशियर भी तो एक कैशियर बनेंगे, वो तीन किधर जाएं, ये बड़ा मसला है। जहां इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको एक बुक पढ़ाएंगे, ये नूरुल्लाह नूर वालों ने तो पढ़ी भी, अगर दिल चाहता है तो दोबारा पढ़ ले, इत्तहादे उम्मत, इतनी खूबसूरत वो किताब है कि असल में अंदर अपने जाती फायदे और नुकसान, ग्रज कुछ भी ना हो ना, मेरा नाम, मैं नीचे क्यों हो जाऊं, तो ये इख्तलाफात, आप तो इधर रहते हैं, मैं तो दुनिया घूमती हूँ, तो मैं वहां मुसलमानों के देख के रोती हूँ, 1.5 इंच की मस्जिद भी नहीं है तुम्हारे पास इस शहर में, एक दो मस्जिद भी नहीं, वो भी लड़ भिड़ रहे हैं। इस दफा हमारा टॉपिक था एक शहर में, सीरत का जो टॉपिक किया, तो बाकी टॉपिक्स में एक जगह टॉपिक आ गया हजरत आयशा का। मुझे बताइए, आयशा का नाम सुनकर दिल में क्या आता है, प्यार और मोहब्बत आता ना, तो मुझे कहने लगी कुछ लोग इस टॉपिक की वजह से नहीं आए। हैं, आयशा के टॉपिक में क्या हो गया, नहीं वो आप समझती हैं ना, फिर कुछ लोग सहाबियात के और वो उनके साहबा के खिलाफ है, तो कहते आयशा तो ठीक ही नहीं थी, नाउज़ुबिल्ला। और आयशा की जिंदगी पढ़ते और तैयारी करते हुए मैं कह रही थी, जिसको आयशा ठीक नहीं लगती फिर उसको मैं ठीक लगूंगी या आप ठीक लगेंगी, जोफे नजर है। तो याद रखिएगा, ये बख्शम बेनम, ये नहीं कबूल, ये बर्दाश्त नहीं है अल्लाह से। अल्लाह कहते इस पे तो ऐसे ही मुसलमानों को मार पड़ती है, सारी दुनिया उनका तमाशा देखती है और इस वक्त हम तमाशा दिखा रहे हैं। आज हमें इल्म की वो कदर नहीं है जो हमें माल और औलाद और घरों की और शादियों और ब्याहों की कदर है, जायज कामों में करें लेकिन इल्म को पीछे ना छोड़ें। दुनिया का इल्म सीखें, पहले दीन का सीखें, साथ दीन का सीखें, वरना याद रखे बात नहीं बनेगी। और अल्लाह ताला ने ये सारी बातें कह के बता दिया। सही मुस्लिम की रिवायत है अबू हुरैरा में, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत का कोई यहूदी और नसरानी जो मेरी बात सुने, यानी नबी सल्लम की शरीयत की बात सुन ले या आपको सुन ले, जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ यानी इस्लाम, और वो फिर ईमान न लाए तो उसका ठिकाना जहन्नम वालों में होगा। मुझे आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो बगी के बाद, सरकशी के बाद फिर आपस में नहीं होता, क्या चीज है जो उम्मत को जोड़ेगी, सवाल लिखिए, इख्तलाफात का हल क्या है, वजह तो समझ आ गई ना, बुनियाद क्या है, हसद और बुगज, बगी, सरकशी, जिदबाजी, ठीक है ये तो समझ आ गई। हल क्या है, एक लफ्ज में बोल सकती हूँ, बल्कि एक लेक्चर भी इसी नाम से बहुत पुराना सेव होगा कहीं, वहदत उम्मत का एक हल है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ, इस कुरान से जोड़ दें। इससे कोई नहीं इनकार करेगा कि हम इस कुरान को अपने निसाब में शामिल कर लें, और कुरान जहां आएगा वहां हदीस साथ आएगी। बस अपनी लिखी हुई किताबें नीचे और अल्लाह और उसके रसूल की किताब को ऊपर कर दें, बस बात काफी है, इसके बाद बात दूसरी तरफ नहीं होगी। और याद रखिए कि ये वो चीज़ है कि जिसने एक दफा सच्चे दिल से मान ली, अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। मुसनद अहमद की रिवायत है हजरत अनस से, कहते हैं कि एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखता था, खिदमत करता था आपकी, वजू का पानी रखा, जूतियां सीधी की, वो बीमार हो गया, तो अल्लाह के नबी उसकी बीमार पुरसी को गए। अब देखिए, यहूदी की बीमार पुरसी को आप गए, उसका बाप भी उसके पास बैठा हुआ था, आपने वहां जाकर उस बच्चे से कहा कि कह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस बच्चे ने बाप की तरफ देखा तो बाप खामोश रहा, कहने लगा जो कहते हैं अबुल कासिम मान जाओ, देखो बेटे को मरते हुए कह रहे मुसलमान हो जाओ, खुद जिंदगी में नहीं हो रहा, बगजम बहिना, क्योंकि उसको पता ये तो अब अल्लाह के पास जा रहा है, मैंने अभी बड़े लोगों को जवाब देना है, बाज़ वह लोग इसलिए भी निस्बतें नहीं बदलते। खैर, उस बच्चे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नक रसूलुल्लाह का, उसके साथ ही वो मर गया। तो अल्लाह के नबी वहां से खुशी से उठे, कहा अल्लाह की तारीफ है जिसने इस बच्चे को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। फ़ैन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेता है। फ़ैन हाजू का, फिर अगर ये आपसे झगड़ा करे, फ़कुल असलम तो वजही लिल्लाह, तो कह दीजिए मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। और किसने कर दिया, वमन इत्तबअनी, उन्होंने भी कर दिया जिन्होंने मेरी पैरवी की, यानी मैंने और मेरे पैरोकारों ने, मेरे मानने वालों ने अपना चेहरा अल्लाह के सामने कर दिया, अल्लाह हमें उनमें कर दे। अल्लाह ने अपनी उम्मत के उन सारे लोगों का जिक्र कर दिया है वमन तबानी में जो अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। दो टोक बात है, सब झुक गए, जिधर जाओ चरो चले जाओ, ठीक है किसी और को कुछ नहीं कहना। वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लमतु। और ए नबी, आप कह दीजिए इनसे भी जिन्हें किताब दी गई, यानी अब यहूद और नसारा से पूछने की बात की गई, और उम्मीयीन यानी मक्का वाले मुशरकीन, इनसे भी जरा आप एक बात पूछिए, क्या असलम तुम, क्या तुम भी मुसलमान होते, डू यू वॉन्ट टू बी मुस्लिम। और ये जुमला हम हर नॉन मुस्लिम को या रास्ते चलते जैसे दावा में बात मौका तो ये पूछती हूँ। मैं ये नहीं कभी कहती आप आर यू डिसबिलीवर काफिर, मैं कहती यू मुस्लिम सिस्टर नाउ, फिर मैं कहती डू यू नो व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम एवरीवन कैन बी मुस्लिम, ज्यूज कैन बी मुस्लिम, हो रियली हो, इफ यू सबमिट योर सेल्फ टू योर गॉड यू आर मुस्लिम, ओके काइज मुस्लिम, बस यही बातें करनी होती हैं। माउंटेन्स आर मुस्लिम, एवरी वन इज ओबेइंग गॉड, सो हू एवर इज ओबेइंग गॉड दैट इज इट। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने नबी को, जरा इन तीनों गिरोहों को जो आपके इर्द गिर्द, आप भी तो दावा दीजिए, तो क्या मुझे आपको नहीं देनी चाहिए। फाइन असलम हूं, और अगर वो इस्लाम ले आए, फकद इहतदौ, देख लीजिए पीछे से रास्ता जुड़ गया। अगर आपके दावा देने पे ये मुसलमान होते हैं, हिदायत पे आ गए हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलुबना, इनके ऊपर जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको बचा दी, तो खुश हो जाओ, आपकी दावत पे कामयाबी है। लेकिन वइन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह फेर लें, फइन्नमा अलैकल बलाग़, तो आपके जिम्मे तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाने की। लोग कहते हैं कोई होता तो है नहीं मुसलमान, कहने का क्या फायदा, भाई ना हो अलैनल बलाग़, आपके जिम्मे पहुंचा। इसके अंदर कि हमें हर मुमकिन कोशिश करके अपने प्यारों को, अपने अपने आप को, दूसरों को इन दीन की दावत देनी चाहिए, और नतायज अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला तो खुद कहते वला तुसलु नसखाबिल जहीम, आपसे जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यानी जो भी है ठीक है, हम वहां पढ़े थे ना ये सूरह बकरा की आयत 119 थी, यहाँ देख लीजिए वल्लाहु बसीरुम बिलिबाद, अल्लाह अपने बंदों के हाल को देख रहा है, अल्लाह ताला को पता है कौन क्या कर रहा है कैसा कर रहा है। तो लिहाजा इन अल्लज़ीना यकफुरूना भी आयतिल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें, व यकतुलूना नबीयीना बगैरी हक, और नबियों को नाहक कत्ल करें, ये किन के जुर्म थे, बनी इसराइल के। व यकतुलूना अल्लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास, और उनको भी कत्ल कर दें जो लोगों को अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं, तो फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐ नबी इनको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दें। यहूद ने नबियों को कत्ल किया, नसारा ने ना सिर्फ यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स जो बाद में उनमें कई सेक्ट्स बन गए ना, एक दूसरे को भी कत्ल करने की कोशिश की। और ये जो बात आप यहां आज हमारे लिए देखें ना, यक्तुलूना अल्लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्त मिनन नास, ये आज के दौर में हक वाले दीनदारों का कत्ल है, उलमाए हक। आज नबी तो है नहीं कोई, तो आज हक बात करने वालों को मार दो, रास्ते से हटा दो, मीडिया से हटा दो, क्योंकि अल हक मुर्र, हक तो कड़वा होता है, अल हक मुर्र, हक कड़वा है, काट दो। आज भी देखिए मीठी मीठी बातें करने वाले दीनदारों को कवरेज मिलती है, और हक वाली बात को लोग दबाना चाहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं उलाइक अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, ये वो लोग हैं जाया हो गए इनके अमल, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनके लिए कोई भी मददगार नहीं। अब देखिए मक्का वालों को बड़ा जोम था कि हम काबा के खिदमतगार हैं, हरम के पासवान हैं, हाजियों को खाना खिलाते हैं, सत्तू घोल के पिलाते हैं, हमें अल्लाह ने बख्श देना है। अल्लाह कहता है हबीता ता मालूम, पकी पकाई हंडिया जाया हो गई तुम्हारी, जल गई, गिर गई। करो तो सही करो, ठीक दीन का इख्तियार करोगे, थोड़े से अमल भी अल्लाह कबूल करेगा, और अगर छोड़ दो, बड़ी बड़ी चैरिटीज कर लो वट एवर, लेकिन अगर तुम एक अल्लाह को नहीं मानते तो कुछ काम नहीं आएगा। तो ये था आज का सबक, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना का जवाब। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, सात चीजें बता दी जो लोगों को अक्सर दीन से रोकती हैं, फिर बीच में शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा में इल्म की अहमियत, और आखिर में इख्तलाफात का नासूर। ये बीच में जो नबियों के कत्ल की बात थी, तो एक हदीस का बस खुलासा लिख लें कि क्यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब उस शख्स को होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया या जिसको किसी नबी ने कत्ल किया। तो ये नबियों का कत्ल हल्की चीज नहीं है। अबू बैदा बिन जराह कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज किया कि क्यामत के दिन सबसे ज्यादा सजा किसकी होगी, तो आपने फरमाया जिसने किसी नबी को या हक बात कहने और बुराई से रोकने वाले शख्स को कत्ल किया होगा। फिर आपने यही आयत पढ़ी जो हम पढ़ रहे हैं, फिर फरमाया उबैदा बनी इसराइल ने नए दिन के अव्वल हिस्से में अचानक हमला करके 43 यानी 43 अंबिया को बयक वक्त कतल कर दिया था। फिर बनी इसराइल में से 112 आबिद और जाहिद मैदान में आ गए और उन्होंने इन कत्ल करने वालों को नेकी का हुक्म दिया, तो शाम होते वक्त इन्होंने इन सब को भी मौत के घाट उतार दिया था और यह सब एक दिन हुआ था। तो 112 को 47 से देखिए, सैकड़ों लोगों को ये एक एक दिन में कत्ल करते थे, ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मेरे आपके लिए बरकत दे इस सारे कहे सुने में और हमारा दिल खोल दे। दुआ कीजिए हमारा दिल इस्लाम के लिए खुल जाए, जैसे हमारी जुबान खुली थी और हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, अब दिल के अंदर ये चीज़ें चली गई, इंशाल्लाह खैर होगी। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.